जय राधमा भव कुंज बिहारे,
यह प्रवचन श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 8 श्लोक संख्या 51 पर 18 अप्रैल 2016 को इस्कॉन जुहू में दिया गया।
गोपी जाना बाला भा, भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हरे कृष्ण।
श्रीमद् भागवतम केंद्र 7 चैप्टर 8 टेक्स्ट 51 चरण ऊचो हरे तवंग्री पंकजम भावापवर्गम आश्रिता या साधु हृष छाया त्वाया सूरा समापिता। हरे तवंग्री पंकजम भावापवर्गम आश्रिता यादेशा साधु हिर्चाया त्वाया सूरा समापिता। हरे तवंग्री पंकजम भावापवर्गमाश्रिता यादेशा साधु हेचाया त्वाया सुरा समापिता।
चरण लोक के निवासियों ने कहा है, प्रभु आपने उस असुर हिरण्यकश्यपु को विनष्ट कर दिया है जो सारे निष्कपट पुरुषों के हृदयों में आतंक बना हुआ था। अब हमें शांति मिली है, हम सभी सदैव आपके उस चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं जो बद्ध जीव को भौतिक कमलों से मुक्ति दिलाने वाले हैं। चारों लोक के निवासियों ने कहा, हे प्रभु, आपने उस असुर हिरण्यकश्यपु को विनष्ट कर दिया है जो सारे निष्कपट पुरुषों के हृदयों में आतंक बना हुआ था। अब हमें शांति मिली है, हम सभी सदैव आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं जो भक्त जीव को भक्ति कलमश से मुक्ति दिलाने वाली है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने नरहरि या नृसिंह देव रूप में उन दुष्टों का वध करने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं जो निष्कपट भक्तों के मन में अशांति उत्पन्न करते हैं। भक्तों को कृष्ण भावना मृत आंदोलन का प्रसार करने के लिए संसार भर में अनेक संकटों तथा अवरोधों का सामना करना होता है, किंतु जो आज्ञाकारी दास भक्ति पूर्वक भगवान पर देश देता है उसे यह जान लेना चाहिए कि नृसिंह देव सदैव उसके रक्षक होते हैं।
हरे कृष्ण।
श्री चरण ऊचो हरे तवंगी पंकजम भावापवर्गमाश्रिता यादे साधु हे छाया या सासुर समापिता। हिरण्यकश्यपु और नृसिंहदेव और प्रहलाद महाराज की कथा सुनते आ रहे हो। वैसे तो हम जब हिरण्यकश्यपु की चर्चा करते हैं मन में क्या विचार आता है, असुर राक्षस है कि नहीं। पर भागवतम के तीसरे स्कंद में आप पढ़ते हो कि जब कुमार ने प्रवेश किया था भगवान के दिव्य धाम में, वैकुंठ धाम में, तो वहाँ छह द्वारों से तो निकल गए थे बिना किसी रुकावट के। जब सातवें द्वार में पहुंचे, द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। द्वारपालों ने कहा कि तुम नंगे बच्चे अन्न जान नहीं सकते। कुमार को इतना आनंद आ रहा था भगवान के धाम में प्रवेश करके, जब उन्हें रोका गया तो बड़े क्रोधित हो गए। और फिर उन्होंने कहा, तुम द्वार पर यहाँ वैकुंठ धाम में रहने के योग्य नहीं हो। उन्हें श्राप दिया। जब कुमार ने देखा कि इन द्वारपालों का बड़ा गहरा संबंध है भगवान के साथ, क्योंकि जब भगवान ने सुना ये वर्तमान तो द्वारपालों का हो रहा था कुमारराज के साथ, तो भगवान बाहर आ गए देखने के लिए क्या घटना बीत रही है। जैसे अगर बाहर कोई जोर जोर से चिल्लाकर बात कर रहा है, तब सब भागोगे देखने के लिए क्या हो रहा है। और कुमारराज ने देखा कि द्वारपालों का बड़ा गहरा स्नेह है और भगवान का भी बड़ा गहरा स्नेह है उनके प्रति, तो उन्हें लगा कि उन्होंने गलती कर दी है, श्राप नहीं देना चाहिए था। पर तो वो सोच रहे थे हमें श्राप वापस ले लेना चाहिए, पर भगवान ने कहा कि मेरी इच्छा से तुम्हें श्राप दो। फिर उन्होंने तीन जन्म ग्रहण के, उनकी एक ही इच्छा थी। द्वारपालों ने कहा आपने जो सजा देनी है हमें दो, पर केवल एक वर चाहिए आपसे। क्या? कि हम सदा भगवान का स्मरण कर सकें। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी अनेक नियमों या विधियों का वर्णन करते हैं, परंतु वो कहते हैं इन सब नियमों का एक ही मूल उद्देश्य है, सदा कृष्ण का स्मरण करो और कभी कृष्ण को भूलो मत। ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण एंड नेवर फॉरगेट कृष्ण। तो इसलिए आप देखते हो कि हिरण्यकशिपु कोई साधारण असुर नहीं थे। जैसे जब उन्होंने एक समय अपने पांव के अंगूठे पर खड़े हुए हाथ को ऊपर रखकर देवताओं के 100 वर्षों के लिए और एक बूंद पानी भी नहीं पिया, तो हिरण्यकशिपु का इस अध्याय में वध हो गया है भगवान के हाथ द्वारा। और परम भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार के वर दिए थे, तो भगवान ने सब वरों का पालन करते हुए प्रकट हुए किस रूप में? भगवान रूप में। और जैसे कि इस श्लोक में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बड़ा दिव्य रूप था। भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। अंग नहीं ऐसे सकल अंदर वृद्धिमान थी, किसी एक अंग से किसी और अंग का कार्य कर सकते हैं। और भगवान प्रकट हुए आधे पुरुष और आधे पशु के रूप में, तो देखा जाए आधा पुरुष आधा पशु के रूप में कोई प्रकट हो सकता है? भौतिक दृष्टि से देखा जाए आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, पर भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। तो इसलिए आज के श्लोक में भी कहा गया है ये नृसिंहदेव भगवान का रूप है, बिल्कुल दिव्यम है। तो हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात अनेक देवता परम भगवान के समक्ष गए, ब्रह्मा शिव इंद्र। और जब हिरण्यकश्यप और भगवान नृसिंहदेव एक प्रकार से युद्ध हो रहा था, सारे देवता इस लीला को बड़े ध्यान से देख रहे थे। तो सारे देवता परम भगवान के पास पहुंचे और आप देख रहे हो इस अध्याय में अलग अलग देवता अलग अलग लोगों के वासी क्या कर रहे हैं, परम भगवान का गुणगान कर रहे हैं। ये है श्रीमद् भागवत में शुरू से अंत तक परम भगवान का गुणगान, और किसके द्वारा, भगवान के भक्तों के द्वारा। एक प्रकार से आप कह सकते हो श्रीमद् भागवत में तो प्रेयर बुक, जिसमें कि अनेक भक्त बड़े सुंदर स्तुतियों के साथ भगवान के अनेक गुणों का वर्णन कर रहे हैं। तो आज के श्लोक में क्या उपदेश दिया जा रहा है, चरण लोक के वासी क्या कह रहे हैं? आपने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया है और वो हमेशा भक्तों को कष्ट दे रहे थे। तो ये ऐतिहासिक है कि जो असुर भाव के व्यक्ति होते हैं वो सदा भगवान के भक्तों को कष्ट पहुंचाते हैं। आप देखते हो आज के वातावरण में भी, और जो असुर भाव के व्यक्ति हैं वो किसी प्रकार का यज्ञ नहीं चाहते। जैसे कि आप भागवत में पढ़ते हो, एक समय महाराज वेना का राज्य था। महाराज वेना असुर भाव के थे, उनके मन में यह विचार था कि सबको मेरी उपासना करनी चाहिए। इस कारण उन्होंने हर प्रकार का यज्ञ समाज में रुकवा दिया था, जिसके कारण यज्ञ जब समाज में बंद हो जाए, जिसके कारण जो आवश्यकता है वो भी कठिनाई से प्राप्त होती हैं। जैसे आजकल आप देख रहे हो, आप लोग महाराष्ट्र में हो, महाराष्ट्र में किस विषय की चर्चा है? पानी नहीं है। हाँ, भगवान की कृपा से आप लोग हरे कृष्णा लैंड में रह रहे हो, जहाँ की पानी की कोई समस्या नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस स्थान का नाम दिया था पृथ्वी पर स्वर्ग, हेवन ऑन अर्थ। तो आप अगर हरे कृष्ण महल में रहते हो तो आपको पानी की समस्या का कोई सपना भी नहीं देखोगे। तो वैसे देखा जाए हरे कृष्ण लैन के बाहर पानी की बड़ी गहरी समस्या है, क्या कई शहरों में बिल्कुल पानी नहीं है, कई शहरों में चार चार दिन बाद पानी आता है, कई शहरों में कॉलेजेस बंद हो गए हैं क्योंकि उस शहर में बिल्कुल पानी नहीं है। और ये भारत के कई स्थानों में है और महाराष्ट्र के अलावा। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि पृथ्वी पर जब समाज पाप का बोझ बढ़ जाता है तो प्रकृति आपको कष्ट देती है। जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं माया दक्षिणा प्रकृति सुते साम, ये जो प्रकृति है मेरे इशारे से चलती है, मेरे आदेश के अनुसार। जब आप पृथ्वी पर यज्ञ इत्यादि का पालन करोगे तो प्रकृति भी साथ देगी, और जब आप यज्ञ इत्यादि नहीं करोगे तो प्रकृति साथ देती है नहीं। भगवद गीता के तीसरे अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, अन्न की प्राप्ति कैसे होती है? अन्न की प्राप्ति होती है कैसे? वर्षा के कारण। वर्षा की प्राप्ति होती है जब आप क्या करोगे, यज्ञ करोगे। और यज्ञ का अर्थ है धर्म के नियमों का पालन। प्रभुपाद जी जब पृथ्वी पर थे 1976 में आंध्र प्रदेश गए थे, उस समय कई सालों से दो तीन साल के लिए वहाँ बारिश नहीं आई थी। प्रभुपाद जी ने भक्तों को कहा तुम लोग जाकर सड़क में हरि नाम करो। तो कई दिनों के लिए भक्तों ने हरि नाम किया और हरि नाम के तुरंत पश्चात बारिश तेजी से बरसने लगी। तो यज्ञ है उपाय। यज्ञ के बिना समाज की आवश्यकताएं कठिनाई से पूरी होती है। और आज आप देख रहे हो महाराष्ट्र में ही नहीं, भारत में ही नहीं, सारे विश्व में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। मूल कारण ये है कि हम सब ने यज्ञ का अर्थ भूल गए हैं। आप गोवर्धन लीला में क्या देखते हो, भगवान नंद महाराज किसान थे, 9 लाख गायें थी, यज्ञ की थी, इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। भगवान ने पूछा क्या कर रहे हो पिता, पिता ने कहा नहीं, पर फिर कहा हम किसान हैं, हम निर्भर हैं इंद्र की कृपा का पर। तो यज्ञ बिना समाज अधूरा माना जाता है। तो जब असुरों का राज्य हो तो यज्ञ तैयारी समाज में रुक जाते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है चरण चरणों के वासियों के द्वारा कि आपने सब ईमानदार व्यक्तियों के लिए जीना कठिन बना दिया था, और अब हम आपके शरणागत होते हैं क्योंकि आपके शरण के माध्यम से ही वन्यजीव जो हैं भौतिक संसार से मुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, हम आपके शरणागत हो रहे हैं। तो ये है शास्त्रों का निर्णय, और शास्त्रों में बार बार आप पढ़ते हो क्या कि हमें परम भगवान के क्या होना चाहिए। तो भगवान के शरणागत होने का अर्थ क्या है, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग अर्थ निकाल सकता है। पर जब शास्त्र में आप पढ़ते हो हम परम भगवान के शरणागत हैं, उसका अर्थ है भगवान की शिक्षा के आधार पर भक्ति का पालन करना। ये नहीं कि जैसे आपका मन चाहे, शास्त्रों की शिक्षा के अनुसार, शास्त्रों की शिक्षा के अनुसार कार्य करोगे तो फिर आप असली धर्म का पालन कर रहे हो। तो शास्त्र का निर्णय क्या है, हमें परम भगवान के शरणागत होना चाहिए, उसका अर्थ है उनकी शिक्षा का पालन। और जो शास्त्रों के नियम हैं वो है भगवान की वाणी, धर्मां च साक्षात् भगवत प्रणीतम्। धर्म का अर्थ है भगवान की वाणी, धर्म का अर्थ है शास्त्र के अनुसार शिक्षा का पालन करना, और भगवान के शरणागत होकर ही आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि परम भगवान जो हैं सदा असुरों का वध करने को तैयार रहते हैं, और जो असुर हैं वो सदा भगवान की भक्ति के मार्ग में कठिनाइयों को डालते हैं। ये कोई नया कार्य नहीं है कि जब आप प्रचार करते हो तो अड़चन का सामना करना पड़ता है। जैसे प्रहलाद महाराज की कथा में आप क्या पढ़ते हो, प्रहलाद महाराज का क्या दोष था, कोई दोष था, 5 साल के बालक, उनके मन में एक ही भाव था भगवान की सेवा, अपने साथियों को वो एक ही शिक्षा दे रहे थे क्या भगवान के शरणागत कैसे होना चाहिए, और किसी प्रकार का भाव नहीं था। पर उनके पिता इसे सह नहीं सके और अनेक प्रकार की कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा, और इतना तक कि उन्हें पहाड़ों की चोटी से फेंका, झेलू सांपों ने घेरा, पर जब भी भगवान ने उनकी रक्षा की। जैसे कहा जाता है राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, भगवान गीता में क्या कहते हैं, हे अर्जुन तुम सारे विश्व को सूचना दो क्या कौन से पति जाने ही न हमें भक्ता, या भक्त जो है कभी भी नष्ट नहीं होगा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य में कि भगवान के जो भक्त हैं जो प्रचार करते हैं तो उन्हें अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब उन्होंने अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया आज से 520 साल पूर्व, बचपन में चैतन्य महाप्रभु ने अपनी बाल लीला प्रकट की, छोटी आयु में ही संस्कृत के बड़े विद्वान बन गए थे, संस्कृत का पाठशाला खोला और फिर उन्होंने अपना संकीर्तन आंदोलन को आरंभ किया। जब संकीर्तन आंदोलन को आरंभ किया नवद्वीप में, कईयों ने इसका विरोध किया। जो मुसलमान थे उन दिनों में भारत में मुसलमानों का शासन चल रहा था, चाणक्य जी वहां के प्रतिनिधि थे जिनकी जिम्मेदारी थी नवद्वीप स्थान की देखभाल, पर हुसैन शाह बंगाल का राजा था। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया, मुसलमानों ने तो विरोध किया, यह कहकर कि अगर आप इस आंदोलन को नहीं रोकोगे तो सारे मुसलमान हिंदू बन जाएंगे। पर जो हिंदू स्मार्ट था, ब्राह्मण थे, उन्होंने भी इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये निमाई ने क्या बनावटी धर्म शुरू कर दिया है, ये हमारे शास्त्र में थोड़ी है। तो उन्होंने जाके भी शिकायत की चंकाजी से कि ये निमाई तो हिंदू धर्म को बुरा नाम देगा, हमारे शास्त्र में कहानी लिखा है कैसे हरि नाम करो। तो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का विरोध मुसलमान भी कर रहे थे, हिंदू भी। एक मुसलमान था जो बार बार शिकायत कर रहा था काजी से, निमाई के प्रचार को रोको। एक दिन चंद काजी ने कहा, तुम हमेशा आकर शिकायत करते हो, रोको 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 निमाई के संकीर्तन आंदोलन को, पर जब भी मैं देखता हूं तुम्हें, मैं देखता हूं कि तुम सदा हरिनाम ही कर रहे हो। तो ये क्या है, एक तरफ से तुम शिकायत करते हो, दूसरी तरफ से सदा हरे कृष्ण बोलते हो। तो फिर उस मुसलमान ने स्वीकार किया, कहा ये बात सच है, जब से मैंने ये हरिनाम सुना है ये हरिनाम मेरे मुंह से बंद ही नहीं होता। तो चांद काजी ने सिपाहियों को भेजकर क्या किया, क्या करवाया, लंगस को तोड़वा दिया। फिर चैतन्य महाप्रभु लाखों भक्तों को लेकर मोर्चा में गए चांद काजी के महल में। तो ये देखा जाता है कि जब आप भगवान का प्रचार करते हो, हर व्यक्ति आपका साथ नहीं रहेगा। आप लोग हरे कृष्ण धाम में बैठे हो, जब प्रभुपाद जी यहाँ हरे कृष्ण धाम में आए थे प्रचार करने के लिए, उस समय यहाँ एक बहुत छोटा मंदिर था, छोटा सा मंदिर। यहाँ जो पड़ोस के लोग थे, खास करके एक पॉलिटिशियन, उनके मन में भाव था कि जमीन खरीद कर होटल बनाया जाए, पर प्रभुपाद जी ने किसी प्रकार से बड़ा बड़े संघर्ष के साथ ये जमीन को प्राप्त किया। और एक समय ऐसी स्थिति आ गई थी कि उन्होंने मंदिर को तोड़ने का भी प्रयास किया, और प्रभुपाद जी बड़े दृढ़ होकर जुड़े रहे और अंत में विजय प्राप्त हुए। तो कहने का तात्पर्य यह है, जैसे कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हमें परम भगवान के शरणागत होना चाहिए। भगवान के शरणागत होंगे तो ही आप जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकते हो। और जब आप प्रयास करते हो धर्म के प्रचार के लिए, ये नहीं कि हर व्यक्ति आपका साथ देगा। चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार भगवान नित्यानंद और हरिदास ठाकुर ने नवदेव धाम में प्रचार करना आरंभ किया। चैतन्य महाप्रभु ने इन भक्तों को आदेश दिया, घर घर जाकर लोगों को एक ही उपदेश दो, क्या? बाजो कृष्णा, बोलो कृष्णा, खोलो कृष्णा शिक्षा, कृष्णा का नाम लो, कृष्णा की उपासना करो, कृष्णा की शिक्षा को अपनाओ। शिक्षा जो कि गीता इत्यादि ग्रंथों में है। जब नित्यानंद हरिदास ठाकुर ने प्रचार शुरू किया, कई घरों में वो गए, लोगों ने बड़े उत्साह से स्वागत किया, कहा कि संत महात्मा आ गए हैं हमारे घर को पवित्र बनाने के लिए, बैठिए, प्रसाद स्वीकार कीजिए। नित्यानंद हरिदास ठाकुर कहते थे, हमें कोई प्रसाद नहीं चाहिए, केवल आप कृष्णा का नाम लीजिए, कृष्णा की उपासना कीजिए। कई घरों में वो जाते थे, लोग दरवाजा भी नहीं खोलते थे, लोग कहते थे ये जासूस आ गए हैं साधु के कपड़ों में, अंदर आएंगे देखने के लिए हमारे घर में क्या है और फिर रात को आएंगे लूटने के लिए, हम नहीं खोलेंगे दरवाजा। कई घरों में वो जाते थे, लोग कहते थे जब हमने प्रयास किया था तुम्हारे संकेतन में उपस्थित होने के लिए, आपने हमें रोक दिया, तो अंदर आने नहीं दिया, तो हमको भी तुमको अंदर आने नहीं देंगे। और आप जानते हो प्रचार के दौरान नित्यानंद के माथे को चोट आई थी, किस कारण? क्योंकि मनाई ने पत्थर फेंका। जब उन्होंने अपना प्रचार आरंभ किया तो उन्होंने सोचा कि जो इस शहर के सबसे पतित व्यक्ति हैं, अगर किसी प्रकार से उनका उद्धार हो जाए तो महाप्रभु की महिमा और भी बढ़ जाएगी। तो उन्होंने लोगों से पता किया इस शहर के सबसे पतित प्रजा कौन है। लोगों ने कहा दो ब्राह्मण भाई हैं, जन्म हुआ था ब्राह्मण खानदान में, पर जो जुड़ गए हैं हर प्रकार की बुरी आदत में, इतना तक कि उनके माँ बाप ने उनको घर से निकाल दिया है। तो नित्यानंद ने सोचा अगर किसी प्रकार से ये दो भाइयों का उद्धार हो जाए तो महाप्रभु की महिमा बहुत बढ़ेगी। महाप्रभु की महिमा तो बढ़ रही थी, जब भगवान प्रकट होते हैं तो अपना दिव्य चमत्कार भी दिखाते हैं। जैसे एक समय जब महाप्रभु छोटे थे, एक समय वो एक पिल्ले को उठाकर घर ले आए थे, माँ ने कहा पिल्ला ब्राह्मण के घर में शोभा नहीं देता। तो निमाई ने कहा अगर पिल्ला नहीं रखने दोगे तो मैं भी नहीं रहूंगा आपके साथ। तो माँ को मजबूरन कोई उपाय नहीं था, पर फिर एक दिन सूचना मिली निमाई को कि तुम्हारी माँ ने वो पिल्ले को छोड़ दिया है। निमाई ने कहा मित्रों से ढूंढो भी ये पिल्ला कहाँ है। ये पिल्ला दिखा कहाँ, शहर के बीच में दो पैरों में नाच रहा था, दो हाथों को ऊपर उठाकर, वो क्या कर रहा था? महामंत्र का उच्चारण। तो पूरे शहर ने कहा ये निमाई तो जादू कर रहा है, इसने पिल्ले को भी भक्त बना दिया। यही भाव था नित्यानंद हरिदास का, अगर हम इन दो को उद्धार कर दें तो लोग कहेंगे देखो महाप्रभु में कैसी शक्ति। और जिसका क्या परिणाम हुआ कि मदाई ने पत्थर भी फेंका नित्यानंद के माथे में। जब भगवान वहां पहुंच रहे थे अपने सुदर्शन चक्र के साथ, नित्यानंद ने कहा नहीं, यही है एक नमूना। तो जब आप प्रचार करते हो तो अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, अनेक प्रकार की। आज आप जानते हो इस्कॉन संस्था के केंद्र हैं सारे विश्व में, खास करके पश्चिम देशों में कई स्थान हैं। यहाँ की जब प्रभुपाद की संस्था पहले पहुंची थी, कईयों ने विरोध किया, कई भक्तों को जेल में जाना पड़ा रशिया जैसे देश में, कईयों की मृत्यु भी हुई जेल में। केवल क्या था उनका दोष? प्रचार का उत्साह। तो भगवान नरसिंहदेव भक्तों के सुरक्षक हैं। प्रभुपाद जी ने जब संस्था शुरू की, शुरू में उन्होंने हमें नरसिंहदेव की उपासना नहीं दी, शुरू में केवल हरे कृष्ण मंत्र दिया। फिर आस्ते आस्ते जैसे अर्चने बढ़ते गई, फिर प्रभुपाद जी ने कहा ये नमस्ते नरसिंहाया प्रार्थना दी। तो भगवान नरसिंहदेव भक्तों की सुरक्षा करते हैं, और जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवान के संदेश का प्रचार के लिए भक्तों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब आप उदाहरण के लिए प्रचार में जाते हो, ये थोड़ी आप भारत में तो हर व्यक्ति आपका साथ देता है, आप उदाहरण के लिए ग्रंथों के वितरण की सेवा कर रहे हो, ये थोड़ी कि आप ग्रंथों के वितरण की सेवा जब शुरू करते हो सब लाइन में खड़े हो जाते हैं, हमें गीता दो, हमें गीता दो, हमें गीता दो, ऐसे होता है। आप अगर शाम के समय किसी शराब की दुकान के सामने से गुजरो तो देखोगे इतनी भीड़, सब जगह जैसे शराब मुफ्त में मिल रही है। पर जब आप प्रचार करने जाते हो, ये थोड़ी कि हर व्यक्ति लाइन में खड़े हो जाता है हमें गीता दो। जब आप प्रचार करने जाते हो आपका क्या अभ्यास होता है? वही जो कि भगवान नित्यानंद का था, कई स्वागत करते हैं, कई विरोध करते हैं, कई आपको दोष भी देते हैं, कई ये भी कहते हैं इसके अलावा और कोई धंधा नहीं है क्या? तो हमारा धंधा क्या है? प्रचार करना। और भक्त प्रचार करते हैं भगवान नरसिंहदेव पर निर्भर रहकर, और भगवान ने शास्त्र में प्रचार के कार्य पर बहुत बल दिया है। भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? कौन है? जो मेरा प्रचार करता है, उसे ज्यादा प्रिय ना कब हुआ है ना होगा। तो भक्त जो है जब प्रचार की सेवा में जुड़ते हैं वो निर्भर रहते हैं भगवान की कृपा के ऊपर। वो ये नहीं सोचते कि प्रचार करेंगे तो हर चीज सरल हो जाएगी। आप प्रभुपाद जी के जीवन में क्या देखते हो? प्रभुपाद जी को कितना संघर्ष करना पड़ा। पिछले साल हमने मनाया था प्रभुपाद जी की गोल्डन जुबली, जब वो चले थे भारत से अमेरिका के लिए। आप अंदाजा लगा सकते हो 70 साल का व्यक्ति केवल 40 रुपए के साथ, बिना गर्म कपड़े के भी, बिना किसी जान पहचान के निकलता है भारत से एक कार्गो के जहाज में, मालगाड़ी में। आप जब यात्रा करते हो, मालगाड़ी में कोई यात्रा करता है तो कार्गो शिप मालगाड़ी के बराबर है उसमें। क्यों? क्योंकि उनके मन में यही आदेश भाव था, गुरु के आदेश को पूरा किया जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है प्रचार के दौरान प्रचार का उत्साह हम सब में होना चाहिए, प्रचार के कार्य में हम सबको जुड़ना चाहिए। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए हम अगर प्रचार करेंगे तो हर चीज सरलता से प्राप्त हो जाएगी। प्रचार के दौरान हमें संघर्ष भी करना पड़ता है, और महान संत प्रहलाद महाराज को भी अनेक प्रकार की कठिनाई सहनी पड़ी। प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने भी जब अपना प्रचार का आंदोलन आरंभ किया, कईयों ने उनका विरोध किया, कईयों ने, पर वो घबराए नहीं। और प्रभुपाद जी जब उन्होंने प्रचार शुरू किया उनको भी अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भक्त कठिन स्थिति का लाभ उठाता है और गहराई के साथ भगवान की शिक्षा का स्मरण करने के लिए, जैसे कुंती महारानी कहती है, हे भगवान मेरे कष्टों को बढ़ाओ, क्योंकि जितना ज्यादा कष्ट मुझे अनुभव करना पड़ता है उतनी ज्यादा मैं आपके चरण कमलों का स्मरण करती हूँ, और जितना ज्यादा स्मरण करूंगी उतनी तेजी के साथ ही जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त होगा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो भक्त प्रचार करना चाहते हैं उन्हें ये भी जानना चाहिए कि उन्हें अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, पर भक्त निर्भर रहते हैं भगवान नरसिंहदेव पर, भगवान नरसिंहदेव भक्तों की सुरक्षा करते हैं। पर इसका यह अर्थ नहीं कि हम प्रयास नहीं करें और ये सोचें कि नरसिंहदेव हमारी सुरक्षा करेंगे, हमें प्रयास भी करना चाहिए। जैसे भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन से क्या कहा, हे अर्जुन मन और बुद्धि को मुझे अर्पण करते हुए क्या करो, क्या करो, युद्ध में लड़ो, तस्मा सर्वेशु कलेशु महामनस्मरण युद्ध चा, मन और बुद्धि को अर्पण करते युद्ध में लड़ो। तो इसी प्रकार हम प्रयास करते हैं, परिश्रम करते हैं और फिर निर्भर रहते हैं नरसिंहदेव भगवान पर। प्रहलाद महाराज से कठिन स्थिति में थे पर उन्होंने प्रचार नहीं रोका, हर और हर मौका का लाभ उठाया प्रचार करने के लिए। तो प्रहलाद महाराज के जीवन में हम ये देखते हैं ये भाव, सदा परा दुखा दुखी, वैष्णव को कहा जाता है परा दुखा दुखी। दूसरे शब्दों में जब कोई वैष्णव देखता है कि लोग जुड़े हैं भौतिक कार्य में ये सोचते हुए इनके द्वारा आनंद आएगा तो बड़ा दुखी होता है। वो क्या करता है, प्रयास करता है लोगों की अज्ञानता को दूर करने के लिए। तो ये है वैष्णव का भाव, और प्रहलाद महाराज के आचरण के द्वारा इस भाव का संदेश हमें प्राप्त होता है। तो प्रचार करना चाहिए, प्रचार सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। तो प्रचार के दौरान हम निर्भर रहते हैं किस पर, भगवान नरसिंहदेव पर, और प्रचारक घबराता नहीं है अगर उसे कठिन स्थिति का भी सामना करना पड़े। तो हम पिछले कई महीनों से प्रहलाद महाराज की कथा पढ़ते आ रहे हैं और आगे दो तीन अध्याय और भी हैं। तो इसे कभी आपको लगता है प्रहलाद महाराज की शिक्षा बहुत ज़्यादा सुन ली है, नहीं, भगवान के दिव्य संदेश का ऐसा प्रभाव है कि आप बार बार सुनोगे तो भी थकोगे नहीं। जैसे आप बार बार हरि नाम का उच्चारण लेते हो पर थकते नहीं, क्योंकि भगवान ने नाम में पूरी शक्ति ला दी है। तो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है इसको जितना सुनोगे उतनी रुचि बढ़ेगी। इसलिए आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या कार्य है, श्रवणम कीर्तनम। श्रवणम कीर्तनम में हमें रुचि बढ़ानी चाहिए, कृष्ण कथा में रुचि बढ़ानी चाहिए। कृष्ण कथा का अर्थ है कृष्ण भगवान की शिक्षा को बड़े ध्यान से सुनना, खास करके भगवत का अध्ययन। जैसे कहा गया है नस्त प्रेष भद्रेशु नित्य भगवत से होया भगवत युद्ध श्लोक के भक्ति भावरी न सके। तो ध्यान से भगवत हम सुनेंगे क्या लाभ होगा, हृदय की मैल क्या होगा, हृदय की मैल को दूर हो जाएगी और भक्ति भावना स्थापित होगी। तो नियमित रूप से हमें भागवतम की क्लास जरूर बैठना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, और इसका यह परिणाम होगा कि हृदय की मैल दूर हो जाएगी। तो संक्षेप में आज के श्लोक में जो चरण लोक के वासी हैं भगवान का गुणगान कर रहे हैं, ये स्थापित कर रहे हैं कि भगवान कैसे असुरों का वध करते हैं। और जब असुरों का राज्य होता है तो हर प्रकार से भगवान के भक्तों का विरोध करते हैं। जैसे कितनी अफसोस की बात है, भारत जैसे देश में रामनवमी सरकार की छुट्टी थी नहीं, उसे एक दिन पहले किसी और व्यक्ति की जन्मदिन था वो छुट्टी थी। जब परम भगवान जिस दिन को प्रकट हुए छुट्टी नहीं। तो ये है कलयुग का प्रभाव, भगवान में भक्तों को कम स्थान दिया जाता है। तो हमें आज इस प्रचार की बहुत आवश्यकता है, उत्साह से प्रचार करेंगे इसका प्रभाव पड़ेगा और लोग जीवन को सफल बना सकेंगे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का? भक्तों को क्या
भक्तों को कब सुख मिलेगा?
जो भक्त है दुख में सुखी रहता है, भक्त ये नहीं सोचता अगर मुझे कठिन स्थिति का सामना करना पड़ रहा है भगवान ने मुझे ऐसी स्थिति में क्यों डाला, मुझे तो हर चीज आसानी से प्राप्त हो जानी चाहिए। भक्त जो है कठिनाई में भी संतुष्ट रहता है, वो है भक्त जो केवल भगवान से सौदा करना चाहे मैं सौदा माना करूंगा, तो मुझे कोई कष्ट नहीं चाहिए, हाँ कोई बीमारी नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई नहीं, वो भक्त थोड़ी, वो तो व्यापारी बन गया। जो भक्त है वो भगवान से एक ही इच्छा रखता है कि मुझे भक्ति का मौका मिले हर जन्म में। ठाकुर भक्तिनाथ जी कहते हैं, हे भगवान मुझे जन्म देना है तो एक वैष्णव के घर में दीजिए, बेशक कीड़े के रूप में। चैतन्य महाप्रभु जी के एक भक्त थे, खोलवे जय श्रीदार, भौतिक दृष्टि से बहुत गरीब थे, छोटा धंधा था केले के पत्तों को प्यालों को बेचना, और उसका 50% खर्चे थे गंगा की सेवा में। और एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने खोलवजय श्रीधर को बुलाया और कहा, मांगो मेरे से क्या वर चाहिए, जो चाहिए मैं दे सकता हूं। तो खोलवजय श्रीधर ने कहा, अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि हर जन्म में मैं आपका स्मरण कर सकूं, आप मेरी दुकान में आओ सौदा करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं तुम्हें ऐश्वर्य दे सकता हूँ, हर प्रकार का सुख। उन्होंने कहा, हमें सुख नहीं चाहिए, हमें केवल हरि नाम चाहिए। तो जो भक्त है वो कठिनाइयों से घबराता नहीं। प्रभुपाद जी को लगभग 30 साल तक संघर्ष करना पड़ा, गहरा संघर्ष, जिसके पश्चात उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। पर प्रभुपाद जी ने कभी यही नहीं कहा, भगवान आप मुझे ऐसा कष्ट क्यों दे रहे हो। तो भक्त जो है हर स्थिति में संतुष्ट रहता है, अगर सुख मिले तो सोचता है भगवान के असीम कृपा से यह सुख मिल रहा है, कष्ट मिले तो ये सोचता है मुझे लाख गुना ज्यादा कष्ट भुगतना चाहिए था, भगवान की कृपा से इतनी छोटी मात्रा में कष्ट आ रहा है। ओके, लास्ट क्वेश्चन।
और ऐसे प्राण दिला सकते हैं और उनको पानी की समस्या हल करने में मजबूर होना पड़े, तो ये कितना बड़ा क्रांति होगा?
सबसे बेहतर उपाय है हरि नाम का प्रचार बढ़ाना चाहिए। अगर हम हरि नाम का प्रचार बढ़ाएंगे तो बिना शंका के अवशंकन की प्राप्ति भी होगी। हम तो घर घर शहर शहर जाकर प्रचार तो कर रहे हैं, आप भी जुड़िए इस प्रचार के आंदोलन में। और भौतिक समाज में आज जल की समस्या है, कल किसी और विषय की समस्या होगी, ये नहीं कि केवल एक ही प्रकार की समस्या है। केवल इन घटनाओं के द्वारा आप देख सकते हो कि शास्त्र में जो लिखा है प्रकृति भगवान के आदेश से चलती है, ये सच है। आपके पास कितनी भी टेक्नोलॉजी हो, टेक्नोलॉजी से आप समस्या का हल कर सकते हो नहीं। कैलिफोर्निया का नाम सुना है आपने अमेरिका में, वहाँ 3 साल से बारिश नहीं आई थी, अभी ये साल आई है बारिश 3 साल बाद। तो आपके पास चाहे कुछ भी टेक्नोलॉजी हो पर आप प्रकृति का विरोध नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप महाराष्ट्र में भारत में सुख देखना चाहते हो तो हरि नाम का प्रचार करो, गीता का प्रचार करो, घर घर जाकर प्रचार करो, लोगों को बोलो भगवान के संदेश को अपनाएं, फिर सुख की प्राप्ति होगी। आज लोग देख सकते हैं कितना कष्ट है समाज में। भगवान कहते हैं दुखावाया मुशाशतम। ओके, और कोई? थैंक यू। प्रचार बढ़ाइए, प्रचार बढ़ाओगे आप लोग? हरि नाम बढ़ाना चाहिए हमें, रोज हरि नाम में जाना चाहिए। इंक्रीज हरि नाम, हरि नाम बढ़ाओगे तो हर व्यक्ति सुखी बनेगा। हरे कृष्णा।
थैंक यू फॉर लिसनिंग टू हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज विजिट gkgoswami.com।